commissioned. 25th December 1985. Object Bab Dada. Kumar se mulaqat. Group number 3. Kumar arthat kamzori ko sada ke liye talaq dene wale. Aadha kalp ke liye kamzori ko talaq de diya. Ya abhi nahi diya hai. Jo sada samarth aatmaye hain unke aage kamzori aa nahi sakti. सदा समर्थ रहना और कमजोरी को समाप्त करना, ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है, परिवार को भी प्रिय है। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले, स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाए, ऐसे सेवाधारी हो तो हर कर्म में यह चेक करो कि हर कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ाने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा निर्विघ्न बनाती है। और याद शक्तिशाली तो सेवा खुशी देती है, दुआएं प्राप्त होती है, सेवा आगे बढ़ाती है, अनुभवी बनाती है सेवा। तो याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। 25 दिसंबर 85 बाबा कह रहे कुमार अर्थात कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले, आधा कल्प के लिए कमजोरी को तलाक दे दिया या अभी नहीं दिया है। जो सदा समर्थ आत्मा है उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। तुम निर्बल नहीं बलवान हो, क्योंकि आज की मुरली से क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सदा समर्थ रहना और कमजोरी को समाप्त करना, ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है। बाबा को कौन सी आत्माएं प्रिय है? शक्तिशाली है, बलवान है, पावरफुल है, ऐसी तगड़ी, ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है तो परिवार को भी प्रिय है। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाली वाले, स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाए, इतने श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। और उससे क्या बनेगी फिर? श्रेष्ठ तकदीर। तो श्रेष्ठ तकदीर का आधार है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। आज की मुरली पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1। कैसी तकदीर बनानी है? तकदीर की लकीर कैसी हो तुम्हारी? संतोष भाई पीछे कैसी हो? छोटी छोटी ना हो, लंबी हो, बीच बीच में कटी ना हो, श्रेष्ठ हो, अटूट लकीर। जितनी बड़ी लकीर हो उतना अच्छा। तो ऐसी कर्मों की लकीर, स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाए, ऐसे सेवाधारी हो तो हर कर्म में यह चेक करो कि हर कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। कर्मों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, स्पष्टता, छिपा हुआ ना हो कुछ, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करते करने वाली विशेष आत्माएं हो। तुम सब कौन हो? विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, गुणवान आत्माएं हो और इस तारामंडल के श्रेष्ठ श्रृंगार हो, इसको कहा जाता है सच्ची सेवा धैर्य। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ाने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। तो आज इसको यहीं पूरा करते हैं। 6 दिन की मुरलियों का रिवीजन मनी भाई स्लोगन से चालू करेंगे।
आज
दूसरा माइक।
सबका आएगा, सबका आएगा। शुरू कर दो।
शांति पहले जो सदा न्यारा बाप का पारा बनते हैं तो सदा सेफ में रहते हैं।
जो सदा न्यारे
और बाप के प्यारे
सेफ
रहते हैं। दूसरा, जब इस संसार के बाद समाचार सुनना सुनाना ये भी सही में कचरा जमा करना है। पवित्रता, तीसरा पवित्रता का पिल्लर जितना मजबूत होंगे तो पिल्लर शक्तिशाली लाइट हाउस का काम करते रहते हैं करेगा। चौथा, क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या। ईर्ष्या यही चिड़चिड़ापन के जड़ है, पहले इसे समाप्त करना है। पांचवा, स्वदेश पहले बाप को सब कुछ हवाला करना, मना काली करें सोएंगे तो और स्वप्न नहीं आ जाएगा, विकार्य और क्रोध का कारण क्रोधमुख बनना है तो स्वार्थ से वजह निस्वार्थ बनना है। इसलिए इच्छाओं को समाप्त करना।
अभी माइक थोड़ा पास में रखो। बहुत अच्छा बोला आपने,
बहुत बढ़िया
बोला। ओम शांति। जो सदा न्यारा और बाप के प्यारा बनता है तो सदा सेफ रहेगा। सेकंड वन, जो भी संसार के समाचार सुनना और सुनाना ये भी मन को किचड़ा जमा करना है। तीसरा, पवित्रता का पिल्लर जितना मजबूत होएंगे तो पिल्लर से ना लाइट हाउस का काम करते रहेगा। फोर्थ वन, वो क्रोध का कारण है ईर्ष्या और स्वार्थ, यही चिड़चिड़ापन के कारण जड़ है, पहले इसे समाप्त करना है। सोने से पहले बाप को सब कुछ हवाले कर काली करेंगे तो व्यर्थ और विकारी स्वप्न नहीं आएगा। सिक्स्थ वन, क्रोधमुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनना, इच्छाओं का पूर्ण कर देना।
दो ही सुनाए। इनको अर्गेनाइज करने कितना टाइम लगा माइक कैसे कर होल्डिंग हो रही
है नहीं रोज 10-12 स्मृति रखते हैं मैंने कर्म में मैंने ये हम हमारा सेवा क्या है ना
मीटिंग में दादी ने टीचर से सवाल उठवाया जो टीवी नहीं देखते और अखबार नहीं पढ़ते वो हाथ उठाओ दादी जानकी ने तो सबने बोला कि शारदा मैंने बहनों ने बोला कि हम पीस ऑफ माइंड देखते हैं तो दादी बोली पीस ऑफ माइंड बाबा ने शुरू किया क्या जो बाबा ने साकार में नहीं किया जो साकार में बाबा ने किया उसको फॉलो हम दादियों ने ऐसा फॉलो किया है क्या कि पीस ऑफ माइंड देखकर अपनी तपस्या की है पीस ऑफ माइंड दूसरों के लिए है सेवा के लिए तो दादी ने ये एकदम तो किसी ने बोला बाबा न्यूज पेपर पढ़ते थे दादी ने बोला मम्मा ने इसने बाबा को फॉलो किया क्या ये मीटिंग का समाज
याद कैसे किया
मैंने
नजदीक
कल शाम 15 मिनट पूरा पढ़ के
15 मिनट कल और परसों
कल शाम से 7 बजे से सुबह तक रिपीट करके अमृत अभी तक 10-15 बार बाबा के कमरे में जहाँ बैठता है तो चिंतन कर सुस्ती नहीं जागती हो गए नहीं हिंदी तेलुगु आता है लेकिन हिंदी प्रैक्टिस कर
ली
बाबा को सुना दिया शांत समय मामा को सुना इस चल में जहाँ बैठता है तो
वहाँ
लेकिन दीवारों के सामने कमरे में कोई नहीं होता है ना आवाज से
कमरे में और आज
हम सुना बाबा
दोबारा
सुना
नहीं पहला बार ही सुना
है ठीक है
लेकिन इधर आने के बाद भूल गए तो सिंगर
ने पूरा तो बताया
प्रवृत्ति का मार्ग में रहते हैं संपूर्ण पवित्रता यही मन ज्ञानी योगी और ज्ञानी योगी का चैलेंज है ओम शांति तो अभी हम सभी ने स्लोगन सुने अभी बाबा के वरदान रिवाइज करेंगे बाबा ने मंडे के वरदान में कहा है कि अपना बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव तो बाबा ने कहा जो अपना बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से जरा भी बाहर नहीं निकालते वो क्या बन जाते हैं सदा विजयी और उसके पहले वो बच्चे क्या बन जाते लवली और लक्की बन जाते उनके सामने कोई भी विघ्न तूफान परेशानी या उदासी आ नहीं सकती अगर आती है तो समझना चाहिए कि मर्यादा की लकीर के बाहर पांव रखा हुआ है जो मर्यादा की लकीर के बाहर पांव रखते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा वो क्या बन जाते हैं फकीर बन जाते हैं इसलिए बाबा कहते हैं फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं क्या बनो सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो तो ये बाबा का मंडे का वरदान था और ट्यूजडे का वरदान खिलौने और खेल तो बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन में ब्राह्मण जीवन में अलौकिक खिलौने और खेल से खेलते हुए शक्तिशाली बनने वाले अचल अलोल भव इसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में जो विघ्न आते हैं वह अलौकिक खिलौने हैं जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए खेल कराया जाता है, हाँ खेल, तो बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन में जो विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन्हों को अलौकिक खिलौना समझ करके खेल खेलो, उनसे घबराओ और डरो नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कौन सी विधि बताई, इसके लिए बाबा ने दो विधि बताई हुई है। एक तो स्वयं को सर्व संकल्पों सहित बाप पर बलिहार कर दो, तो माया बार नहीं कर सकती है, और दूसरा हर रोज अमृत वेले साक्षी होकर के स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अधोल बन जाएंगे। ये दूसरा वरदान था। और तीसरा वरदान, उसमें बाबा ने कहा कि अपने स्मृति द्वारा क्या करो, समर्थि और साकर बाबा का, बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया। हाँ, स्मृति के द्वारा अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले परोपकारी भाव, नहीं परोपकारी भाव नहीं, अथॉरिटी स्वरूप भाव। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जय साकार बाबा ने अपने स्मृति स्वरूप द्वारा जो कर्म किए वह ब्राह्मणों के लिए संयम बन गए। तो बाबा ने कहा, हाँ जी, हाँ परिवार के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बन गया। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। इसके लिए, और जैसे साकार बाबा स्वयं स्मृति स्वरूप थे, तो अथॉरिटी से बोलते थे कि जो भी साकार से जो भी कोई उल्टा कार्य होगा तो उसको उल्टा कर देंगे। और स्मृति स्वरूप के नशे में रहने से, नशा था कि स्मृति में रहने से कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी स्वस्थिति में रहेंगे, स्व की स्मृति में रहेंगे, तो जो भी संकल्प चलेंगे, बोल बोलेंगे या कर्म करेंगे, वह आपका संयम बन जाएगा। तो ये तीसरा वरदान था। और चौथा वरदान, आगे आगे वाले, तो चौथा वरदान है परोपकारी बनने के लिए। चौथा वरदान है परोपकारी बनने के लिए। तो उसमें बाबा ने कहा कि अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। तो इसमें बाबा ने कहा कि परोपकार, सहयोगी के साथ सहयोगी बनकर चलना, यह कोई क्या नहीं है, महावीरता नहीं है। जैसे बाप ने अपकारियों पर उपकार किया, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कैसा भी असहयोगी हो, आप अपने सहयोग की शक्ति से क्या करो, उसको भी सहयोगी बना दो। कभी ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर कहकर छोड़ न दो, अपने सहयोग का बल देकर उसको क्या बनाओ, बलवान बनाओ। इससे सर्विस की प्लेनिंग रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे और इससे सहज ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। और वरदान नंबर 5, बाबा ने कहा कि शुक्रवार का वरदान, शुक्रवार का वरदान है मन मनाभाव की स्थिति से सबके मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। जो बच्चे मन मनाभाव की स्थिति में रहते हैं वो सहज ही औरों के मन के भावों को समझ जाते हैं। तो औरों के मन के भावों को समझेंगे तो उनकी जो चाहना है, जो उनकी प्राप्ति की इच्छा है, उसको सहज पूर्ण कर सकेंगे। इससे वो आत्माएं अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएगी। और शनिवार का वरदान देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बढ़ाने वाले क्या बनना है, सिद्धि स्वरूप भाव। तो देह अभिमान का त्याग अर्थात देह अभिमानी बनने से बाप के साथ सर्व संबंध और सर्व शक्तियों की अनुभूति होती है। यह अनुभव होना ही संगम योग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। तो विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को यूज करने से इसमें दो बातें होती है। पहली बात कौन सी, एक तो वृद्धि होती है और दूसरी सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि जैसे देह के संबंध और स्नेह के पीछे तीन बातें कौन कौन सी कुर्बान की हैं, ताज तख्त और असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह के प्रति अपना देह भान नहीं छोड़ सकते। तो बाबा ने कहा इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये छह वरदान थे और आज का वरदान, इन सभी वरदानों का सार व्यर्थ की लीकेज को बंद करो तो उससे क्या बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। तो व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले सुबह शक्तिशाली भाव। और दूसरा कुछ था कम खर्च वाला सीन भाव है। तो बाबा ने कहा कि बाप से जो खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला मशीन बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ नहीं, और जहाँ समर्थ ही है वहाँ व्यर्थ आ नहीं सकता। अगर व्यर्थ है तो चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो तो क्या नहीं बन सकेंगे,
कम खर्च वाला।
तो शक्तिशाली और शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। दूसरा एक बात, एक पॉइंट और थे, शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे और तो ये बाबा के सप्ताह के वरदान थे। अभी आइए
फटाफट आ जाओ माइक माइक पास ही रखते हैं।
ओम शांति। शायद इनकी मुरली का हम प्रश्न उत्तर में जवाब
देंगे।
पहला प्रश्न है, मधुबन में आते हैं किसके लिए, शनिवार की मुरली से,
कल की मुरली है।
हाँ शनिवार बोला ना।
बताओ फटाफट पूछो,
जल्दी जल्दी। शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए, क्योंकि शिव बाबा कहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वह निराकार है, इसलिए बाप दादा कहना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, भारत को क्या कहा जाता है,
जो अपने राष्ट्र को बोला था वही शब्द था। हाँ इंस्ट्रूमेंट पता नहीं, इंग्लिश में
बहुत सारा नहीं, शनिवार की मुरली से है ना, बहुत सारे खड़े हैं, क्या बात है, चल गए। हाँ नहीं सप्ताह की नहीं चलेगी, इसलिए तो प्रश्न बना के लाए ना।
ट्रैवलमेंट की है।
भारत को ही सत्युग कहा जाता है, भारत को ही कलयुग कहा जाता है। कलयुग ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सत्युग में कितने घराने होते हैं? हाँ, नाम बताओ। राजा घराना और प्रजा घराना। मुरली किस लिए मिलती है? नहीं 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 नहीं, किस लिए? उत्तर चाहिए ना उसका। बाबा कहते हैं याद अर्थात योग बल से कट कम होगी, गफलत ना हो, इसलिए मुरली मिलती। क्योंकि मुरली में बाबा हमें सावधानी देती, क्या क्या गलती करते हो सब बाबा हमें बताती, इसलिए मुरली मिलती है। पहले नंबर का दुख कब शुरू होता है? हाँ, कौन शादी करते हैं? हाँ, जब कुमार और कुमारी शादी करते। बाबा कहते तुम्हें ऐसा ख्याल भी नहीं रखना है। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने क्या कहा? सीन तो भी
मैंने एक बम काले ने फटाया था।
डॉक्टर ने क्या कहा?
यार दुनिया कलयुग की कलयुग ही रहे, कलयुग रहे। बाबा ने कहा वो तो मैं याद नहीं।
बाबा ने क्या कलयुग ही रहेगा?
15/6/17 की थे। हाँ, मुफ्त में अपनी बर्बादी करना है तो क्या चिंतन करे? हैं?
अब आप समझो।
आबाद और बर्बाद वाली पॉइंट है। मुफ्त में अपनी बर्बादी करनी है तो क्या करें?
याद भूल जाना।
नहीं
रुकना रुकना
नहीं,
प्रश्न ऐसे थोड़े निकाले हैं।
देखो मुरली लेके, मुरली लेके बैठे पहले वो तो देखो, ऐसा थोड़ी होता है। मुरली ले
चीटिंग नहीं,
चलो ले। हाँ, धंधा दोरी बच्चों आदि की चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी करेंगे।
लेकिन ढूंढ तो लिया फिर भी।
तो क्या हुआ, मुरली तो पकड़े है ना, उसको तो पहले से पता है ना। बाबा ने इस मुरली में शरीर के लिए क्या कहा? फ्राइडे की मुरली से हाँ मार होगी शरीर है, इसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो क्या तेज हो गया?
काम विकार।
हाँ, काम विकार तेज हो गया। किससे कभी भी नहीं रुकना है?
बाप से, पढ़ाई से।
बाप से और पढ़ाई से। बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? हाँ, पक्की और मजबूत ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। ऊपर बाबा इस मुरली में क्या नहीं भूलने के लिए कहा है? फ्राइडे की मुरली
क्या नहीं भूलना? बाप को नहीं भूलना।
हाँ, और क्या?
बाप, पढ़ाई,
बरसात। बाप तो है। हाँ, बाप को और घर क्यों?
मुझे
14 तारीख की है। यह संगम का कौन सा समय है?
सुहावना।
संगम का सुहावना समय। बाबा ने कहा है तुम महसूस कर सकते हो क्या?
कौन सा समय चल रहा है? किस संदर्भ में बताया था? मैं तो बहुत कुछ
थोड़ा
तो स्वर का है, कलयुग का है,
ये पुरुषार्थ के
लिए।
नहीं
अगर आप शरीर छोड़ते हैं। हाँ दो प्रश्न है, काम विकार को कितना जीता है और विकारों में चलायमन
हम बाप को कितना याद कर सकते हैं। हम बाप को कितना याद करते हैं, कट कितनी उतरी है, हर एक बच्चे अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं। और बाबा ने कहा उस अनुसार हमारी पद भी मिलती है। और वास्तव में तुम क्या हो?
ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन
आत्मा भाई
बहन नहीं
मुसाफिर हो?
मुसाफिर नहीं हो, इस बार मुसाफिर नहीं हो, मुसाफिर
तुम बाप ही
है। नहीं बताओ बताओ
वास्तव में तुम परमधाम के निवासी
हो? नहीं नहीं
असल में तुम परमधाम के
नहीं नहीं
घर में रहने वाले
क्या है?
क्या नहीं हो?
नहीं क्या हो, क्या हो
असल में तुम? भाई ऊपर वाले एक तो ये तो आपने बनाया नहीं प्रश्न इसका।
फ्राइडे की मोटी नहीं नहीं
नहीं मिला अभी तक।
नहीं नहीं
तुम देवकुल की महान आत्मा है।
नहीं नहीं बता दिया जा, तुम सच्चे सच्चे ज्ञान गंगाए हो। ठीक है
ठीक है।
बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं?
कम
है हाँ चार्ट, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो चार्ट रखो, नोटबुक रखो,
डेली डायरी।
हम सब कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? हाँ अविनाशी सुख धाम। 13 तारीख की मुरली से है। तुम्हें किसका चिंतन करना है? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। हम ड्रामा के कौन है? नहीं नहीं ऐसा काम भी चलेगा नहीं। हाँ हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। हीरो कैसे? हीरो शब्द है नहीं ना,
मुख्य एक्टर है।
हर एक जीव की आत्मा जानती है, हर एक जीव की आत्मा जानती है,
हर एक जीव
हाँ
जीव
जीव माने आत्मा क्या जानती हो बताना।
जिसकी आत्मा क्या जानती है।
चलो मनुष्य बहुत माथा मारते हैं क्यों? हाँ आत्मा क्या चीज है उसको देखने के लिए, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है इसलिए बहुत माथा मारते हैं।
माथा तो आदमी मारा बहुत मारते हैं।
आत्मा पाठ बजाते बजाते क्या हो गई है? कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने, क्योंकि बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करेंगे तभी प्रलाभ मिलेगा और प्रलाभ से ही मुझ पर। जैसा हीरे जैसा जन्म किसके लिए कहा है ना 12 तारीख की मुरली से है, किसके लिए कहा? नहीं
हमारे सही मानने वाला
है। हीरे जैसा जन्म किसके लिए कहा जाता है? स्वर्गवासियों के लिए। भक्ति भी किसके जैसा कोई नहीं कर सकते।
नारद
और मीरा का नाम हाँ भारतवासी जैसे। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती है उतना वहाँ क्या मिलता है? क्या मिलेगा? सोने की ईंटें मुफ्त।
कौन सी ईंटें? क्या नहीं, कौन सी ईंटें मिलेगी?
नहीं, सोने की ईंटें मिलेगी ना।
कौन सी ईंटें? क्या ईंटें नहीं होंगे, कौन सी ईंटें?
हाँ तो क्या मिलेगा वही तो प्रश्न। भक्ति में तो ढेर क्या है,
सामग्री है, सामग्री
नहीं। भक्ति मार्ग में तो ढेर है, क्या चीज ढेर है?
यात्रा
पंचायत। जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ कौन नहीं होंगे? नहीं हाँ पतित आत्माएं नहीं होंगी वहाँ। भारत को क्या खंड कहा जाता है? नहीं वो तो मुझे पहले से पता था। नहीं
खंड है ना, भारत को कौन सा खंड कहा जाता है?
हाँ नहीं, महादानी खंड, क्योंकि यहाँ ही दान पुण्य सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, 11 तारीख की मुरली से है, लास्ट है। हम कहाँ पढ़ते हैं?
पाठशाला।
गलत आधा बोल रहे हैं। हाँ खुदाई स्कूल
पाठशाला अगले वाला अगले दिन कर तेरा।
बाबा कब आते हैं?
हैं?
नहीं
बाबा कब आते
हैं?
हाँ आह्वान करते हैं।
नहीं
अशांति
दुख बोलो जितना यहाँ है सब बोलो।
रात को आते
जब हम बुलाते हैं तभी आते
हैं।
देवता सभी मानने वाला नहीं।
जब दुनिया पतित होती है और उनका अंत होता है तब बाप आते। क्या बताया तो? दुनिया अंत हो, जब दुनिया पतित बनती है अंत होता है तब बाप आते हैं ना। मनुष्य जब दुख से तंग होते हैं तो क्या कहते हैं? मनुष्य जब दुख से तंग होते हैं तब क्या कहते हैं?
ते प्रभु सुख शांति दो
है ना। भगवान को कहते हैं कि भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। इस मुरली के आधार से क्या क्या गुप्त है? 11 तारीख की मुरली
ज्ञान गुप्त है,
हाँ रजाई गुप्त है,
लड़ाई
बनेगा। एक कुंभकर्ण नहीं अनेक है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते नहीं, उसके लिए बाबा ने क्या कहा?
जब कर्म की लंबा हो गया।
एक कुंभकर्ण नहीं अनेक है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते नहीं, उसके लिए बाबा ने क्या कहा?
उनका लास्ट में पार्ट है,
हाँ का पार्ट है, नहीं नहीं कुछ तो है
उनका लास्ट में,
हाँ नजदीक का है
अंत में जा जाओ के लिए क्या कोई अंत में जाने
है ना, जिनका पाठ है वही पुरुषार्थ करेंगे, वही माता पिता के दिल तत्व पर चढ़ेंगे। भाग्यशाली कौन है? बाकी है भाग्यशाली कौन है? अभी तो हो गए ना, हाँ लास्ट प्रश्न, भाग्यशाली कौन है?
भाग्यशाली कौन है? हम बच्चे
नहीं 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 बस
प्रश्न उत्तर मिला
है ना, बताओ हो गए है ना, हमें भगवान का हाथ मिला है इसलिए हम भाग्यशाली हैं। एक प्रश्न कहीं छूट गया ऐसा लगता है।
क्या बताए हम, अब सब बड़े बड़े महारथी, हम तो अभी नए नए बच्चे। वो तो बताने जैसा नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। जब छोटी थी 9-10 साल की, 2003 में पहली बार आई थी, बच्चों के प्रोग्राम में आती थी। ज्ञान तो समझ में नहीं आता था तब, बहुत ही बोली पाली थी तो, और दादी की पालना मिलती थी। दादी क्लास में पूछती बच्चों आज क्या खाना है, तो चिल्ला चिल्ला के कहते दादी आइसक्रीम खाना है, पाव भाजी खाना, तो बस यहाँ खाना पीना और अच्छा लगता था तो आते रहते थे। फिर बाबा का हाथ छूट गया, स्टडी में इतने बिजी हो गए, मुरली सुनना भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और वो लोग वहाँ खींचते थे, मेरी मम्मी कहती थी यहाँ आओ, वो लोग वहाँ खींचते थे, फिर वहाँ चली गई। तो बाबा का हाथ छूट मतलब हाँ, तो फिर पिछले सीजन में मेरी मम्मी ने कहा चलो बाबा से मिल के आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी मेरा तो हाथ ही छूट गया बिल्कुल। वैसे घर में वो वातावरण रहता था, लेकिन मैं कभी मुरली सुनने भी नहीं जाती थी, और तो मैंने सोचा नहीं मुझे नहीं आना, लेकिन वो जबरदस्ती ले आई। फिर कुमारियों का क्लास था एक, तो वहाँ पे सुनाया स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बनने की विधि। तो वहाँ पे दीदी ने पूछा कि प्रभु प्रिय बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है, तो कहा रोज अमृत वेला करना और मुरली सुनना, कौन कौन ये सब करेंगे? पूरे क्लास ने हाथ उठाया, सिर्फ मैंने नहीं उठाया, और मैं फर्स्ट रो में ही बैठी थी। फिर मैंने सबको देखा सब हाथ उठा रहे, तो मैंने भी धीरे धीरे हाथ उठा दिया। फिर बाबा के घर में हाथ उठाया तो जाना तो पड़ेगा ही, फिर से चालू हो गई। और पेपर भी इतने आए बाद में, तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी तू जब से सेंटर पे जा रही है तब से ये परिस्थितियां सब आ रही है, वहां जाना बंद कर दे। लेकिन मेरा और ही मतलब बाबा के साथ प्यार और ही बढ़ता गया। और क्या बताओ,
ये 10-15 दिन में आप
क्या, हाँ 5 जून को आए,
एक मिनट तो, कमाई की क्या अनुभव किया?
हाँ अमृत वेला, समय, संकल्प और सेवा, चार बातों के महत्व को यहाँ आके जाना। मतलब घर में तो हम समय यूं ही वेस्ट करते रहते हैं, कभी बातें करने में और मोबाइल में या कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ आके समय के महत्व को जाना कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी वेस्ट करेंगे तो कल्पांतर के लिए यही चलेगा। और यहाँ से यहाँ से रोज कुछ ना कुछ नया सीखा, रोज सीखा नया। मैं सेवा में, मतलब मुझे रोटी बनाना भी नहीं आता था, सेवा में जाती हूँ तो रोटी बनाना आ गया। फिर एक दिन एक भाई ने कहा पराठे बना दो मुझे, मुझे तो पराठे बनाना आता नहीं, फिर भी वो तो बन गया। फिर मैं इन्वॉल्व करने गई तो पीछे घूमी, वो भैया टॉवेल लेके खड़े है मेरे लिए, लो हाथ पोछ लो। मैंने सोचा अरे घर में मेरी मम्मी भी मेरी इतनी केयर नहीं करती, तो जो परिवार का प्यार यहाँ पे मिला वो इतने सालों में जो नहीं मिला था वो यहाँ आके मिला। और ईश्वरीय प्रेम, ये शब्द तो यहाँ आके अनुभव किया अमृत वेले। बाबा से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मेरे आंख से आंसू ही बहते रहते। और हमारी दीदी कहती है आंसू बहाना कमजोरियों की निशानी, और मम्मा ने कभी आंसू नहीं बनाए। हाँ लेकिन बाद में मैंने एक बुक में पढ़ा कि ये तो प्रेम के आंसू है, बहुत समय के बाद मैं वो तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ही आते हैं ना, यहाँ से थोड़ी आते हैं,
दोनों आते हैं, जो प्रेम के आंसू वो इधर से आते हैं।
तो मेरे प्रेम के नहीं थे क्या? नहीं नहीं प्रेम के ही थे मेरे, लेकिन
वो जो दुख के होते हैं वो इधर से आते हैं, और प्रेम के आंसू मीठे होते हैं चटके देते हैं, और ये वाले जो कड़वे होते हैं।
और हमारी दीदी तो आप सबसे इतना इंस्पायर होके जा रही है, वो तो घर पे जाके बोलती है मैं तो दीदी सेंटर पे ही समर्पित होके ये हमारी दीदी। चलो ओम शांति।
चलो आओ गीत गीत चलो आओ, आप तो कोई बात नहीं,
आप और फटाफट गीत के लिए भी आ
जाओ, थोड़ा
जल्दी आओ, टाइम हो गया है।
ओम शांति।
ओम शांति। चलो चलो।
मेरा शरीर का नाम जागृति है और मैं ज्ञान में 14 साल हुआ। मैं जब पहली बार बाबा को मिलने आई थी मधुबन में तो मुझे पहले तो शांति का ही अनुभव हुआ और स्वर्ग तो मुझे यहाँ ही दिखाई देता है मधुबन में। जैसे ऐसे लगता है स्वर्ग तो जैसे मधुबन में ही है। तो बाबा से जब पहली बार मैंने मिलन मनाया तो जब मैं हॉल में बैठी थी तो बाबा ने हॉल में सब बैठे थे, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, सिर्फ एक बाबा और मैं। और बाबा ने ऊपर उठा लिया और ऊपर उठाकर फिर बाबा ने वो लाइट की जो किरणें है ना वो मेरे पर ही पड़ रही थी। तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। पहली बार बाबा से जब अव्यक्त वाणी सुनी तो बाबा की वाणी कैसी है वो उनको पता नहीं था, वो क्या बोलते हैं वो सुना ही नहीं देता था। तो मैं मुख से भी यही बोलती थी कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा ने तभी बोला अच्छी तरह से कान खोल कर सुनो। वैसे ये अनुभव रहा। और यहाँ जो सिचन अभी भट्टी की जो हमको शांतिवन में भट्टी में जाना था लेकिन वहाँ नहीं गए, लेकिन यहाँ भट्टी का अनुभव जैसा ही रहा, जो रोज क्लास मिला और योग की भी अनुभूति अच्छी हुई। तो बाबा के ये सीजन जो फल की चल रही है तो सीजन जो ये जो फल के सीजन जो खाते हैं तो बहुत ताकत मिलती है, तो यहाँ से हम बहुत ताकत लेकर जाते हैं। फिर सभी सेंटर में भी वहाँ बहुत हमारे संख्या होती है 500 की, वहाँ भी जाकर हम ये सब सुनाएंगे।
आएंगे
तब
जाएंगे
तब आएंगे
अगले कलर
नहीं नहीं ओम शांति। तूने रात गबाई सोई के, दिवस गबाई खाई के, हीरे जैसा अनमोल जीवन था, कौड़ी बदल गबाई के, तूने रात गबाई सोई के।
दूसरा
बस यार, ढूंढते रहना कहाँ है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, आए है तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए है तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, मरना तेरी गली में। ओम नमः शिवाय। तुम मात सखा स्वामी, तुम ही सबके रखवाले हो, तुम मात सखा स्वामी, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो, तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओ राही रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं दूर नहीं, रात के राही थक मत जाना, थक मत जाना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, मिट ना सके जिसे अब भिजा भी, जल ना सके भी जिसे बिजलिया भी, मोहब्बत का वो आसिया पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है।